ओम शांति। हमारे एक एक सेकंड का योग का क्या महत्व है? हमारे एक एक सेकंड के लिए भी शरीर से डिटैच हो जाना इसका क्या महत्व है? संसार को क्या प्राप्ति होती है हमारे योग से? जैसे हम आत्माएं एक सेकंड के लिए भी स्वयं को आत्मा समझते हैं या देह से डिटैच हो जाते हैं, तो संसार को क्या प्राप्ति होती है उससे? संसार को शांति मिलती है और सुख मिलता है और नई ऊर्जा, नया उमंग आत्माओं को मिलती है और अशांति से मुक्ति की अनुभूति होती है। प्रकृति को भी वाइब्रेशंस जाता है। जैसे आत्मा स्वयं की स्थिति में स्थित हो जाती है या फिर जैसे ही आत्मा देह से डिटैच हो जाती है, वैसे ही आत्मा में शक्ति आना चालू हो जाती है। ज्ञान तो बहुत है, परंतु माया जीत बनने के लिए कुछ और शक्ति की आवश्यकता है। केवल ज्ञान की शक्ति काफी नहीं है, वहाँ योग भी चाहिए। ज्ञान तो संसार की आत्माओं के पास भी बहुत है, परंतु जब तक योग से उसमें बल ना भरा जाए तब तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती। जब तक आत्मा देह से अलग होने का अनुभव ना करे, और वो एक बार नहीं बार बार, और कुछ समय के लिए नहीं लंबे समय के लिए, तब आत्मा में पावर भर जाती है। और जब आत्मा में इस तरह पावर भरती है तो उस आत्मा से स्वतः ही किरणें, विकिरण संसार में रेडिएट होना चालू हो जाती है। तो आज बाबा किससे मिल रहे हैं? स्वराज अधिकारी बच्चों से। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने विदेशी बच्चियों की विशेषताएं सुनाई थी। कौन सी? दो विशेषताएं बताई थी। पहली तो बहुत भोग लिया और भोगने के बाद फिर त्याग सहज हो गया। पहले ही किनारा कर लिया था और उसमें फिर सहारा मिल गया, इसके लिए स्वतः ही नष्ट मुआ हो गए। एक तो ये, दूसरा, दूसरी विशेषता उनकी, हाँ वो तो एक हो गई। और एक विशेषता लोक लाज, वो उसमें से पहले ही छूटे हुए हैं, इसके लिए छोड़ो तो छूटो सहज हो गया उनके लिए। तो दूसरी वो विशेषता है उनमें। और विशेषता ऑस्ट्रेलिया वालों की, लास्ट संडे, बिना कोई सहयोग के केवल बाप के संबंध संपर्क से क्या सेवा की वृद्धि की। और ऑस्ट्रेलिया वालों से क्या कहा था पिछले संडे? एसी की टिकट के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए और एक और पैसों की चाहिए, मनी। मनी कौन सी? अभी एक हफ्ता हुआ है, कौन सी मनी? विजयी भव। और सर्टिफिकेट कौन सा? हर कंडीशन में सेफ, हर परिस्थिति, हर समस्या को सेकंड में पार करना, ये अगर है तो एसी का टिकट मिलेगा। एक बाबा शब्द से क्या हो जाता है? जादू का शब्द है, उससे हो क्या जाता है? जैसे जादू की कोई रिंग है, जैसे जादू की कोई वस्तु है, जैसे ये महामंत्र है, तो बाबा शब्द एक बार कहने से ही साथ का अनुभव होता है, मुश्किल सहज हो जाती है, निर्विघ्न हो जाते हैं और छत्र छाया का अनुभव होता है आत्मा को। और क्या कहा था विदेशी बच्चों से बाबा ने लास्ट संडे? बांधेलियों से मुलाकात की थी मॉरिशस की, और जितना तुम बाप को याद करते हो बाप उससे कदम गुना जास्ती तुम बच्चों को याद करता है, और चिल्लाना आत्माओं का चिल्लाना, कौन कौन सा चिल्लाना था? भूख से चिल्ला रही है आत्माएं, महंगाई से चिल्ला रही है, टैक्स से चिल्ला रही है, पढ़ाई के बोझ से बच्चे चिल्ला रहे हैं, शरीर का रोग और मन की अशांति और घर की समस्याएं और राजनीति में कुर्सी और एक दूसरे बड़े अधिकारी एक दूसरे से भयभीत, बच्चे का पढ़ाई का बोझ, नौ प्रकार का चिल्लाना, और सृष्टि कैसी हो रही है? चला रहे पहिए से, धक्के से। तो इसके लिए तुम बच्चों का क्या कार्य, ये बाबा ने अमृत वेले दृश्य देखा था। इसके लिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उनको भक्ति का फल देना है। हमारी प्रजा और हमारे भक्त दोनों है, पूज्य स्वरूप को इमर्ज करने के लिए कहा था ना। किसका उदाहरण दिया था पूज्य स्वरूप में? हनुमान और वैष्णो देवी का, ये दो उदाहरण दिए थे। तो भक्तों की प्यास बुझानी है, भक्तों को तृप्त करना है, अशांत आत्माओं को शांत करना है, ये बाबा ने पिछले संडे कहा था। आज की मूल्य में बाबा ने विदेशी बच्चों की कौन सी विशेषता बताई?
दूसरे धर्म में जाने का पार्ट समाप्त हुआ,
दूसरे धर्म में जाने का पार्ट उनका समाप्त हुआ। वो टेम्पररी टाइम, थोड़े टाइम के लिए उस धर्म में गई थी, गलती से उस डाली पर चली गई थी। केवल ये विदेशियों की बात नहीं, हमारी भी बात है, हम भी गलती से दूसरी डाली पर चले गए थे गलती से। वो बच्चे कैसे, क्या शब्द बाबा ने कहा? चात्रक है, उनका ये चात्रक पना सिद्ध होता है, क्योंकि वो अभी दूसरों को इधर लाने की कोशिश में है, उमंग उत्साह है उनको बाप का बनाने में। तो ये आज की मुरली में विदेशियों की एक विशेषता। ये दूसरी, जो पहले कहा था वही, खाने का उदाहरण दिया ना आज भी, कम समय में बहुत सारा अनुभव हो गया है, गिरने का और चढ़ने का। माया ने थोड़े ही समय में सारा अनुभव करा दिया, फुल फोर्स। इसके लिए अभी जैसे वो थक गए हैं, और जब थक जाते हैं तो लेटते ही गुम हो जाते हैं, डीप साइलेंस या स्लीप, डीप स्लीप का अनुभव करते हैं। तो भोग को भोग कर पाया कि उसमें कुछ भी नहीं है, जो पिछले संडे कहा था वही इस संडे में भी इस तरह की विशेषता रिपीट। तो आज हम मुरली को चालू करते हैं। आज बाबा ने दो व्यवसायों को याद किया है मुरली में, कौन से? संसार के दो व्यवसाय कौन से? बिजनेसमैन कहाँ आ गया आज की मुरली में? नागेश भाई जी, कौन सा व्यवसाय याद किया आज? दो व्यवसाय याद किए। व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, वो तो नियम बताए वहाँ के।
अच्छा, वो तो नियम होता है दफ्तर में,
वो दफ्तर का नियम है। अगर गलती से किसी को इश्क प्यार मोहब्बत हो जाए तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है, वो नहीं। एक तो मदारी, मदारी क्या करता है? जमुरा, बंदर को नचाता है, एक तो वो, और दूसरा सर्कस में कहाँ है, वो तो हो गया नहीं प्रोफेशन। और दूसरा कौन सा प्रोफेशन था? सपेरा क्या करता है? बीन बजाता है ना, वो भी याद किया ना। क्या करना है तुम्हें? मुरलियां तो बहुत सुनी, अब बाप आए हैं मिलने के लिए। अशोक भाई, मुरलियां बहुत सुनी है, अभी बाप मिलने के लिए आए हैं। इसके लिए ऐसे मुरलीधर बनो, कैसे? जो मुरली के आगे माया न्योछावर, सरेंडर, समर्पित, कुर्बान हो जाए, हार मान जाए। सरेंडर होने वाली मुरली चलाओ। वो साज, साज के दो अर्थ होते हैं, एक तो इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक, दोनों अर्थ है। स्थूल साज वो तो बजाते हो, उसका तो बहुत शौक है, परंतु वो बजाते समय अभी कौन सा राग का साज याद करो या बजाओ? मायाजीत। मायाजीत का राग का साज, मायाजीत का राग वो देखते समय ये याद करो। तो आज मुरली में बाबा ने कहां से शुरुआत की, क्या कहा आज मुरली में? डबल विदेशियों से बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं मेडिटेशन हॉल में। ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप, कितने सेंटर थे ऑस्ट्रेलिया में तब? पांच। अब कितने हैं? 50 नहीं, कम है। तीन तो मुख्य रिट्रीट सेंटर है, 20 मेन सेंटर्स है और कुछ 15-20 सब सेंटर या गीता पाठशाला जैसा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से मिल रहे हैं। और तो बाबा ने एक आज दरबार लगाया है, दरबार देखा। क्या देखा दरबार में? राज्य ठीक है, दरबार ठीक है, प्रश्न पूछे बहुत सारे ना, राज्य कैसा है, दरबार कैसा है, स्वराज्य कैसा है, ये कैसा स्वराज्य है जिसमें राजा कौन है, मुख्य कार्यकर्ता कौन है और बाकी राज दरबारी वो कौन है? तो आत्मा कौन है? राजा। आत्मा कौन है? रचयिता। आत्मा कौन है? करावनहार। आत्मा कौन है? डबल स्वराज्य अधिकारी अलग अलग जगह पर। तो आत्मा यहाँ जो कि राजा है, जो कि रचयिता है, जो डबल स्वराज्य अधिकारी है, करण करावनहार है। जैसे बाप क्या है? त्रिमूर्ति। वैसे आत्मा भी कौन है? त्रिमूर्ति। आत्मा की तीन शक्तियां जिसको बाबा ने क्या क्या नाम दिए? ब्रह्मा विष्णु शंकर, मन बुद्धि संस्कार। तीन शक्तियां, त्रिमूर्ति शक्तियां, विशेष कार्यकर्ता, विशेष सहयोगी कार्यकर्ता, सूक्ष्म शक्तियां, अलग अलग नाम दिए हैं। तो ये तीन शक्तियां, पहली मन, क्या करता है वो? उत्पत्ति करता है, संकल्प को रचता है। दूसरा बुद्धि, बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है, अर्थात पालना जैसा कार्य है। भगवान बाबा ने इसे ब्रह्मा विष्णु शंकर के कर्तव्यों में फिट करने की कोशिश की है, पर संस्कार में क्या फिर, उसके लिए तो छोड़ दिया, वो तो कहा ही नहीं शंकर है करके, कंट्रोवर्सी हो सकती है इसलिए उसको छोड़ दिया। बाबा ने क्या कहा? अच्छा व बुरा परिवर्तन। ब्रह्मा तो ठीक है, मन ब्रह्मा है, ब्रह्मा अर्थात रचना करना, उत्पत्ति करना, तो मुख्य कार्यकर्ता वो मन। अगर मन ठीक है, यथार्थ है, तो बाकी कार्यकर्ता भी यथार्थ होंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो आत्मा में ही तो मन बुद्धि और संस्कार है। ये अगर आत्मा है, आत्मा जब विचार कर रही है तो वो मन है, मन ही है, आत्मा ही मन है। आत्मा जब विचार कर रही है तो मन है, आत्मा जब निर्णय कर रही है तो बुद्धि है, आत्मा में जो कर्म के जो इम्प्रेशन पढ़ रहे हैं तब वो संस्कार है। अभी एक ही में ही सब कुछ है, पर फिर भी यहाँ बात कैसी हो रही है? आत्मा अलग, मन बुद्धि संस्कार अलग, और फिर वो कर्मेंद्रिय तो छोड़ो, वो एक तरफ। ये ऐसा क्यों? जबकि समझाने के लिए, क्योंकि मन ही संकल्प कर रहा है, संकल्प ही निर्णय शक्ति भी क्या है? मन और बुद्धि को अगर देखा जाए तो संकल्प ही तो है, वो भी निर्णय करना। क्योंकि संकल्पों की जो स्पीड इतनी ज्यादा है, इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि तुम अपने आप को अलग समझो, आत्मा, और ये जो शक्ति है ये अलग है, मन बुद्धि और संस्कार, ताकि इनको भी हम साक्षी होकर देख सके। वास्तव में देखा जाए तो उसी में सब कुछ है, मन की ही शक्ति है तीनों भी। फिर भी क्या कहा जा रहा है? ये तो जैसे वो संन्यास में जो कॉन्सेप्ट है, आत्मा कहाँ है? मन बुद्धि संस्कार सबसे बाहर, परे निर्लेप है, ये सबसे कुछ नहीं होता है उसको। ये जो कॉन्सेप्ट है बाबा ने जो कहा है वो है दरबार, अर्थात आत्मा यहाँ राजा, और ये उसके कार्यकर्ता, मुख्य कार्यकर्ता, विशेष सहयोगी, ये सारे कार्यकर्ता है मन। बुद्धि और संस्कार। तो मन क्या करता है? संकल्प रचता है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है। और संस्कार अच्छे व बुरा परिवर्तन, ये तीन बातें। तो बाबा ने क्या प्रश्न पूछा और क्या चेकिंग करने के लिए कहा? चेकिंग करो कि रूलिंग पावर है कहाँ तक है, इनके ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, संस्कार के ऊपर। रूलिंग पावर अर्थात शासन करना, रूलिंग पावर अर्थात अधिकार में रखना, अधिकार की शक्ति, एक शब्द मुरली में आया है, अधिकार की शक्ति से। और सबसे पहला वार माया का कहाँ पर होता है? आदि शक्ति जो मन है, और उसको क्या कर देता है? देशद्रोही, विश्वासघाती, ट्रेटर, बागी बना देता है, और राज्य छीनने की कोशिश करता है माया। माया यहाँ अगर इसको अलंकारिक भाषा को हटा दिया जाए तो माया अर्थात देहभान, माया अर्थात देहभान के संकल्प। तो देहभान के पहले संकल्प आते हैं और फिर वहाँ निर्णय शक्ति जो है वो धुंधली सी हो जाती है, समझ में नहीं आता है अब क्या करना है। जैसे ही देहभान आता है वैसे निर्णय शक्ति कम हो जाती है और फिर कुछ गलती होती है और उस गलती का संस्कार, और वो संस्कार रिपीट रिपीट होते रहता है और आत्मा नीचे गिर जाती है। देहभान जैसे खाई है, उसमें जाने के बाद ऊपर फिर से आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए बहुत समय लगता है आत्मा को, और वो भी कुछ कुछ आत्माएं, सब नहीं उठ सकती है। इसके लिए बाबा ने संस्कार के लिए बहुत अच्छा शब्द कहा, चढ़ती कला और गिरती कला। किसकी? संस्कार की। कितनी सूक्ष्म बात है। फिर से अलंकारिक भाषा को अगर हटाओ तो आत्मा की चढ़ती कला और गिरती कला अर्थात संस्कार, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, प्यूरिटी के संस्कार, इम्प्यूरिटी के संस्कार, कभी वो इमर्ज तो कभी ये इमर्ज। इम्प्यूरिटी के संस्कार इमर्ज होने के बाद क्या हो जाता है? प्यूरिटी कम हो जाती है। आत्मा को क्या अनुभव होता है? आत्मग्लानी का अनुभव होता है। और क्या होता है? हाँ, उसमें क्या क्या, वृत्ति खराब होती है, दृष्टि खराब होती है। मैं ब्राह्मण आत्माओं की बात कर रहा हूँ अभी। ब्राह्मण आत्मा जिसे सारे नियम और मर्यादाएं पता है, ऐसी आत्मा में अपवित्र संस्कार अगर मर्ज हो जाए, इमर्ज हो जाते हैं, तो क्या होता है उसका हाल? स्थिति गिर जाती है, दंड मिलता है। बाबा ने कहा ना, यहाँ दंड अर्थात क्या? स्थिति का गिर जाना ही धर्मराज का दंड है। वो कोई धर्मराज पकड़ के कुछ बैठा नहीं है दंड देने के लिए, यही दंड मिलेगा। स्थिति गिर जाना एक, और खुशी गायब हो जाना। खुशी जो आंतरिक खुशी है एक, वो केवल प्यूरिटी की स्टेज में ही प्राप्त की जा सकती है। वो ऊपर से तो कुछ नहीं दिखाई देगा, परंतु आंतरिक खुशी जो है वो गुम, गायब। चेहरा भी उदास लगेगा अगर ज्यादा ही खुशी गायब हो गई तो। परंतु क्योंकि लंबे समय का योग और तपस्या और पुरुषार्थ है, इस वजह से वो शायद दिखाई भी नहीं दे। हम उन आत्माओं की बात कर रहे जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, जो तपस्वी है, योगी है, पवित्र है, जिन्हें सारे नियम, धारणाएं, मर्यादा सब कुछ पता है, उनमें अपवित्रता के संस्कार जब इमर्ज होते तो क्या होता है? उस दिन योग में मन नहीं लगेगा, उस दिन मुरली जो है उसमें उतना रस नहीं आएगा। रस कब उतना? बेचैनी होगी और क्या होगा? क्लाउडी, हेजीनेस आ जाएगा। निर्णय शक्ति जो है वो काम नहीं करेगी। क्या आएगी? ईर्ष्या। अच्छा चलो, ईर्ष्या द्वेष सब उत्पन्न होगा। और मुरली में जो उसमें रस है वो नहीं आएगा, और उसमें जो नशा चढ़ना चाहिए वो नहीं चढ़ेगा, और जो उसमें से खींचना है कुछ तो पावरफुल, क्योंकि एक सबसे मुख्य बात है कि एकाग्रता नष्ट हो जाती है, थकान सी महसूस होती है, ऐसा लगता है सो जाओ बस, बहुत कर लिया योग। कब पुरली पूरी होती है और कब यहाँ से जाए, नाश्ता इंतजार कर रहा है, बुद्धि पर जैसे बोझ आ गया है, भारी भारी लगना, हेडेक, संदेश देने की इच्छा है, ग्रुप भी सामने खड़ा है, परंतु वाणी में शक्ति गुम किसी ने छीन ली जैसे। कौन आया पता नहीं, सारा ज्ञान भी बुद्धि में, परंतु कोई आया और जिसने छीन ही लिया है और बोल भी दिया तो भी उसमें वो प्रभावशाली वाणी नहीं है। वाणी में जो प्रभाव होना चाहिए था, अगर शक्तिशाली वाणी है तो बोलते ही जो बोलने वाला है उसे ही पता चल जाता है कि ये पावरफुल था, उसे ही पता चल जाएगा कि जो बोला वो बस ऐसे ही बोल दिया। वो तो एक्सीडेंट्स, तो वो तो आगे की बातें हैं। और एक मुख्य बात, जब आत्मा देहभान में रहती है और जीवन में परिस्थितियां तो आएगी, वो तो अपने अपना उनका चालू है, नई नई परिस्थितियां हर दिन आएगी, उनमें जो सामना करने की पावर चाहिए वो नहीं होगी वहां पर। उस वहां पे फिर और जैसे ये कुचक्र है, पहले स्थिति डाउन है, पहले ही देहभान में है, उसमें परिस्थिति आ गई, अब उससे लड़ने का शक्ति नहीं है, तो और नीचे स्थिति डाउन, फिर भक्त बन जाती है ब्राह्मण आत्मा, फिर बाबा से योग नहीं फरियाद, मांगना, रोना, अर्जी, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, हमारे लिए योग लगाओ, बोलते हैं ना। नहीं, हम जो दूसरी आत्माएं उनसे भी कहती है ना कि हमारे लिए भी योग लगाओ, हमको भी सकाश दो, सीधा सीधा बोलते हैं, मांगना पड़ता है। फिर अवनति, एक है उन्नति, उन्नति से आत्मा अवनति की तरफ आती है, एक है चढ़ती कला, एक है गिरती कला, एक है राइज, एक है फॉल, एक है उत्थान, एक है पतन। ये हम आत्माओं के 84 जन्मों के उत्थान पतन की बात नहीं कर रहे, अभी संस्कारों के उत्थान और संस्कारों का पतन, अप डाउन, राइज फॉल, उन्नति अवनति, उठना और गिरना। मिकी माउस बाबा कहते खेल करते हैं। तो ऐसी अवस्था में उसका नीचे गिर जाना और फिर उठना, बहुत पावर चाहिए यहाँ पर। अगर उसको यथार्थ मार्गदर्शन मिल जाए उस समय तो उठ सकती है, या फिर कई तो ज्ञान भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि सब अंधकार ही अंधकार नजर आता है। टाइम वेस्ट करेंगे व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, साधन, घूमना फिरना, भोजन, इसमें डूब जाती है आत्मा। संग भी ऐसे ही मिलते हैं इसी तरह का, क्योंकि इस तरह का ही बहुत सारी आत्माएं हैं। आंतरिक स्थिति गिरी हुई है, पर ऊपर से दिखा भी नहीं सकते किसको दिखाए और कैसे दिखाए, परंतु अंदर की स्थिति गिरी हुई है। और उसमें आजकल के जो साधन है, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ये भी एक साथ वार करते हैं, परिस्थितियां भी वार करती है, और ये आत्मा गिरते गिरते जैसे कोई बॉल फेंको सीढ़ी के ऊपर, ऊपर नहीं आता है वो, उसको नीचे ही जाना है। स्थिति भी नीचे 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 गिरती जाती है। तो इसके लिए ये जो बात कही ना, संस्कारों का उत्थान और पतन, संस्कारों की असेंडिंग स्टेज और डिसेंडिंग स्टेज, चढ़ती कला उतरती कला, ये संस्कारों के लिए कहा है बाबा ने आज। तो स्वराज्य अधिकारी कौन है? आत्मा। उसमें भी डबल स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि वर्तमान और भविष्य, वर्तमान भविष्य का दर्पण है, इसमें दिखाई देता है क्या होने वाला है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, अंग्रेजी में कहावत है। पालने में क्या दिखता है, क्या हिंदी में भी कहावत है ना, बच्चों के पालने में पुत, पुत के पैर पालने में, ऐसा दिखता है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, देखकर हम हाँ मुला ची पैर फाड़ दे, दैट इज इन मराठी। तो इस तरह का जो है तो वर्तमान जो है भविष्य का दर्पण है। स्वराज्य अधिकारी, डबल स्वराज्य अधिकारी, अभी भी स्वराज्य अधिकारी तो वहां पर भी स्वराज्य अधिकारी, यहाँ पर सब ठीक तो वहां पर सब ठीक, और यहाँ पर ठीक कब, जब रूलिंग पावर होगी, मन बुद्धि और संस्कार त्रिमूर्ति शक्तियों के ऊपर अधिकार होगा संपूर्ण, तब होगा ये। उसके बाद में जैसे सतयुग में क्या होता है, एक धर्म और एक राज्य, तो यहाँ एक धर्म अर्थात क्या और एक राज्य अर्थात क्या, एक राज्य अर्थात एक राज्य अर्थात राजेश भाई एक राज्य अर्थात एक राज्य अर्थात एक के इशारे पर सब चलने वाले वो एक राज्य एक धर्म अर्थात एक धारणा श्रेष्ठाचारी चढ़ती कला। तो मन क्या ना करे और बुद्धि क्या ना करे और संस्कार क्या ना करे तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। मन में क्या ना हो
मनमत
बुद्धि क्या ना करे निर्णय शक्ति में मिलावट और हलचल संस्कार नाच न नचाए बंदर का नाच जैसे उछलते हैं बंदर वैसा नाच न नचाए। तो सबसे पहले आएंगे मन जो है संकल्प करने वाला जो है आदि शक्ति जो है ब्रह्मा। इधर से आ जाइए भाई माता जी आप उधर चले जाइए। तो सबसे पहला है मन जो करता है संकल्प वो क्या ना करे मनमत। तीन को अलग करते रहना है दिन भर मनमत क्या है श्रीमत क्या है और परमत क्या है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जो संकल्प आ रहे हैं आज वरदान में भी कहा ना निमित्त आत्माओं को किस पर अटेंशन रखना है निमित्त आत्माओं को किस पर अटेंशन रखना है एक एक संकल्प कर संकल्प पर निमित्त आत्माओं की एक भी कमजोरी छिप नहीं सकेगी। इसके लिए मन वाचा मनसा वाचा कर्मणा तीनों पर अटेंशन पर पहले कहा मन पर अटेंशन संकल्प पर अटेंशन एक एक संकल्प पर अटेंशन। क्योंकि आप एक कारण बताओगे तो बाकी आत्माएं अनेक कारण बताएगी इस तरह से। तो सबसे पहला है मन वो मनमत उसमें ना हो। तो सारे दिन भर एक महत्वपूर्ण कार्य जो करना है वो है मनमत क्या है परमत क्या है और श्रीमत क्या है इसको अलग करते रहना। ये जो आया है संकल्प ये मनमत है कि परमत है या श्रीमत है। परमत अर्थात दूसरों की दूसरों ने ये कहा मॉब मेंटेलिटी दूसरों को देखकर मन में स्थापन हुई कोई धारणा या सुनकर वो तो पता श्रीमत तब पता चलेगी जब हमारा निरंतर अध्ययन होता रहे मुरलियों का। क्योंकि नहीं तो श्रीमत कहां से पता चलेगी बहुत सारी श्रीमत तो अभी भी गुप्त है जो हमने पढ़ी नहीं है परंतु वो उसमें है हमको नहीं पता भले हमने सुनी है पर भूल गई है। इसके लिए बार 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 अध्ययनशील स्टूडियस होना चाहिए विद्यार्थी लाइफ लॉन्ग लर्नर हर दिन अध्ययन होते रहना चाहिए कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। क्योंकि हमें श्रीमद नहीं तो पता कहां से चलेगी कितने भी क्लासेस सुनो कुछ ना कुछ तो उसमें रह जाता है कुछ तो ऐसी बातें हैं जो उसी में है केवल अव्यक्त वाणियों में ही है 69 से लेके तो जो अब तक है सारी। क्योंकि जो क्लासेस भी है उसमें सारी बातें नहीं है डिस्कस्ड कुछ तो हमें ही खोजनी पड़ेगी क्या है। तो सबसे पहला है मन मनमत पर ना चले दूसरा बुद्धि क्या ना करे मिलावट और हलचल। बुद्धि की मिलावट के लिए बाबा ने क्या कहा किस पे मिलावट किससे कौन कौन सी मिलावट व्यर्थ और यथार्थ और व्यर्थ यथार्थ में व्यर्थ की मिलावट यह है मिलावट और हलचल बुद्धि हलचल में आ जाती है। जो कहा ना अभी हमने जो चर्चा की जहां देहवान आता है वहां बुद्धि में हलचल होती है बुद्धि निर्णय करना बंद करती है कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए धुंधला सा हो जाता है अंधियारा छा जाता है जैसे कि। तो वो एक बात बुद्धि और तीसरा संस्कार संस्कार क्या ना करे नाच ना नचाए बंदर का नाच ना नचाए संस्कार। परंतु एक बार संस्कार बन गया तो उसको नाच नचाना ही है। एक बार संस्कार बन गया संस्कार को ही आदत भी कह सकते हैबिट भी कह सकते चित्त सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ बनता है वो संस्कार है। और संस्कार एक बार बन गया तो वो संस्कार स्वतः ही काम करता है फिर हम कुछ नहीं करना पड़ता है वो अगर अच्छा है तो स्वतः ही कदम अच्छाई की ओर और जो भी करेंगे अच्छा ही होगा। अगर चिंतन का संस्कार बन गया है तो स्वतः ही चिंतन होते रहता है। अगर योग का संस्कार बन गया है, अशरीरीपन का संस्कार बन गया है, तो स्वतः ही अशरीरीपन की अवस्था उत्पन्न होती है। परंतु यदि देहभान का संस्कार है, व्यर्थ का संस्कार है, पर चिंतन का संस्कार है, तो वो भी स्वतः ही काम करेगा। फिर उसी को बाबा ने कहा बंदर का नाच नचाना। तो वो हो गया संस्कार। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार तीनों अधिकार में हो, क्योंकि सबसे पहला अटैक मन पर होता है। इसके लिए मन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें संकल्प उत्पन्न होते हैं। अगर वो यथार्थ है तो बाकी भी सहयोगी साथी बन जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले इस पर अधिकार की शक्ति से इसको विशेष सहयोगी बनाओ, इस कार्यकर्ता को। और फिर बाबा ने कहा रूलिंग पावर, अगर रूलिंग पावर है तो माया हार नहीं सकती। जब माया देखेगी कि ये लोग में दो चीजें हैं, एक तो होशियार है और दूसरे अटेंशन है, तो माया नहीं आ सकती। तो अटेंशन और होशियार अगर है तो, और ये अटेंशन भी एक दिन का, दो दिन का नहीं, हर समय का, बार बार अटेंशन बार बार देते रहना, एक पल भी अटेंशन कम ना हो। पहरेदार बाबा ने कहा है कभी अटेंशन को। तो और अगर रूलिंग पावर नहीं है, उसका क्या करो, कारण को ढूंढो, और कारण को क्या करो, निवारण करो। कारण अर्थात क्यों हो रहा है ये। जैसे कोई चिकित्सक होता है ना, डायरेक्ट दवाई थोड़ी देता है, दवाइयां तो भरी पड़ी है सीढ़ी में, चिमन में बहुत सारी दवाइयां है, परंतु उसके पहले निदान होता है, डायग्नोसिस चाहिए। जब तक डायग्नोसिस नहीं, वो कितनी भी दवाइयां कौन सी दे। तो यहां कौन सा डायग्नोसिस करना है, विकारों का डायग्नोसिस करके आना चाहिए कि ये जो अवस्था गिर गई, ये काम की वजह से गिरी, क्रोध की वजह से गिरी। डायग्नोसिस क्या है, बिना डायग्नोसिस के कैसे दवाई करेंगे। पहले डायग्नोसिस चाहिए हाथ में, क्रोध के वजह से है, लोभ के वजह से है, अहंकार के वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न, ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसका मूल कारण। बाबा ने कहा कारण समाप्त तो माया समाप्त, कारण के स्वरूप में माया आती है। इसके लिए कारण को पकड़ो, कोई भी चीज हो रही है उसका कारण क्या है, और इस कारण को ढूंढने के लिए, इतना आसान काम नहीं है कारण को ढूंढना, बहुत अंतर्मुखता चाहिए, बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए, बहुत हाई स्टेज ऑफ प्यूरिटी चाहिए। जो प्यूरिटी बार बार खंडित हो रही है उसमें ढूंढ नहीं पाती वो आत्मा कारण को, और वो रिपीट करती जाती है। एक भूल हुई, उस भूल को ठीक करने के लिए दूसरी भूल, दूसरी भूल को ठीक करने के लिए तीसरी भूल, भूल पर भूल, भूल पर भूल, भूल पर भूल। इसी को मनुष्य जीवन कहता है, भूलों की श्रृंखला। अच्छा नहीं, वो नहीं, इधर आईएएस की एग्जाम में अभी कुछ सालों में एक निबंध आया था उनको, द ओनली लेसन वी हैव लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्न एनी लेसन। इतिहास से हमने केवल एक ही शिक्षा ली है कि हमने कोई भी शिक्षा नहीं ली है। ये अभी अभी जो एक आईएएस की एग्जाम हुई थी उसमें ये निबंध आया था ऐसे, कि वो महाभारत में भी दिखाया ना, वो यक्ष के पास चारों पांडव जाते, पहले एक जाता है, फिर वो कहता पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद ही जल पीना। तो वो पी लेता है, चारों की मृत्यु हो जाती है। फिर चौथा, पांचवा जब युधिष्ठिर जाता है और उसका जो संवाद है दोनों का, बहुत ही पावरफुल संवाद है, उसमें एक प्रश्न ये है कि मनुष्य जो है उसके दुर्भाग्य का क्या कारण है या उसके दुख का क्या कारण है। तो वो उत्तर में देता है, या फिर ऐसा था वो प्रश्न कि सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है मनुष्य के स्वभाव का। वो कहता है कि मनुष्य इतने अनुभव प्राप्त होते हैं परंतु अपने अनुभवों से सीखता नहीं है। ऐसे नहीं कि हमने गलतियां नहीं की, और पर गलतियां की पर सीखा नहीं उससे, इसके लिए वही गलती फिर रिपीट हो रही है, एक ही गलती रिपीट हो रही है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य यही एक मनुष्य के स्वभाव का कि अपने अनुभव से सीखता ही नहीं है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कारण को ढूंढो, इटियोलॉजी, जिसको हम लोग इटियोलॉजी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। इटियोलॉजी क्या है, कॉज क्या है, तब पता चले आगे उसका क्या डायग्नोसिस है, उसको क्या ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट होगी। जिस परिस्थिति में अब हम है, जो स्थिति गिर गई है, उसका कारण काम विकार है, क्रोध आया था वो कारण है, लोभ था, अहंकार था, क्या था, ईर्ष्या था, द्वेष था, कौन सा, वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म कारण है। उस कारण को पकड़ना और उसको वहां कट कर देना, जब तक वो नहीं जाएगा हम क्या कर रहे हैं, खाली झाड़ की जो है ना, खाली पत्तियां तोड़ रहे हैं, उसकी टहनियां तोड़ रहे हैं, वो बीज अंदर है। महात्मा बुद्ध ने जो उपमा दी है ना, ये जो झाड़ है इच्छाओं का, उसका बीज है अज्ञान, वो झाड़ है अज्ञान का, और उसके जो फल है वो है दुख। दुख क्यों मिला, क्योंकि इच्छाएं थी, उसका बीज क्या है, अज्ञान था, और एक एक फल जो है उसमें एक एक बीज अज्ञान का है, वो अज्ञान के बीज फिर गिरते हैं, फिर से झाड़ उत्पन्न होता है इच्छा का, फिर उसमें जो फल प्राप्त होता है वो है दुख का फल। अभी दुख है जीवन में, कारण क्या है, ये झाड़ जो उत्पन्न हुआ है इच्छाओं का झाड़ है, इसका भी बीज क्या है, अज्ञान। तो सारी बात यहां पर आकर रुकती है कि अज्ञान के वजह से हम इस समय दुखी है। ब्राह्मणों की बात चल रही है, अज्ञानी जो संसार की आत्मा है उनकी नहीं, हमारे अगर कोई दुख है तो उसका कारण है अज्ञान। इसके लिए ज्ञान को बढ़ाना यही एकमात्र साधन है, ज्ञान हर दिन बढ़ते जाए और योग की भी साधना बढ़ती जाए। तो बाबा ने यहाँ कहा, क्या कहा, कारण का निवारण करो। तो यहाँ तक ये जो मुरली है, इससे हम सीखने वाली कौन कौन सी बातें हैं, या फिर यहाँ से ग्रहण करने वाली बातें कौन सी है। सबसे पहले तो मन श्रीमत पर रहे, मनमत और परमत उसमें मिक्स ना हो। बुद्धि जो हो वो हलचल में अगर है तो कारण ढूंढो, अगर उसमें मिलावट हो रही है, किसकी मिलावट, व्यर्थ की मिलावट यथार्थ के साथ, तो उस व्यर्थ को वहां से निकालो। हमारे जो कर्म है, यथार्थ कर्म किसे कहा जाएगा, हमने कभी ये चर्चा की थी शायद सुबह, यथार्थ कर्म अर्थ सही तो, पर वो कौन निर्धारण करेगा, आप कह रहे हो अर्थ सही तो, हम कह रहे हो हमारा यथार्थ है, दो आत्माएं कहती है ये मेरा अर्थ यथार्थ है, वो कहता है मेरा यथार्थ है। अब
स्वीकार कर लेता है,
नहीं, दोनों ही ज्ञानी है, दोनों ही तपस्वी और दोनों ही योगी है, वो कहता है मैं राइट हूँ, ये कहता है मैं राइट हूँ, हानि न पहुंचाए। अच्छा, और उन्नति करे, नहीं अभी हम बात उन कर्म की कर रहे हो कि दो आत्माएं हैं, वो कहता है मैंने ये किया, वो कहता है ये तुमने नहीं करना चाहिए था, अब ये ठीक कौन है, ये कहता है मैंने जो किया श्रीमत पर किया, वो कहता है तुमने जो किया वो श्रीमत पर नहीं किया, और दोनों ही ज्ञानी है और दोनों ही तपस्वी और योगी है। अब बोलो समय अनुसार प्रसंग के अनुसार हर वो कर्म जो आत्माभिमानी स्थिति में किया जाता है वो राइट है, यथार्थ है, ठीक है, राइटियस है, हर वो कर्म आत्माभिमानी स्थिति में। एक सेकंड, हर वो कर्म जो परमात्मा याद में किया जाता है, परमार्थ या परमात्मा याद या बाप की याद, वो राइट है। हर वो कर्म जो श्रीमत अनुसार है, जो हम कह सकते हैं या कोट भी कर सकते कि ऐसा है, ये यहाँ ऐसा बोला हुआ है, और उस अनुसार हमारा कर्म है, वो यथार्थ है। और जैसा बहन जी ने कहा, हर वो कर्म जो किसी को दुख ना दे और जिससे हमारी उन्नति हो, वो हर कर्म यथार्थ है। तो यहाँ बुद्धि के लिए ये देखना है कि हमने जो कर्म किया, जो निर्णय लिया, वो यथार्थ था और यथार्थ था, पर वो तो निर्णय होने के बाद में ही, रुक कर अगर हम सोचे तो पता चले, अगर हम केवल बढ़ते जाए आगे और देखे ही नहीं कि ये जो हुआ गलत, ये किस, कौन सा वो निर्णय किया था उसके वजह से हुआ, ये बहुत जरूरी है। भले यहाँ पर उसका कुछ फायदा नहीं, पर अगली बार के लिए अटेंशन रहेगा, अनुभव तो मिलेगा ना। वो जो कहते हैं ना, अनुभव, एक्सपीरियंस इज द कॉम्ब विच अ मैन गेट्स आफ्टर ही बिकम्स बाल्ड। अनुभव वो कंघी है जो मनुष्य को तब मिलती है जब वो गंजा हो जाता है, पर फिर भी वो हाथ में तो आ गई, अभी दूसरों को तो गाइड कर सकेंगे, दूसरों को तो बता सकेंगे चलो। इट्स लाइक अ कॉम्ब विच अ मैन गेट्स आफ्टर ही बिकम्स बाल्ड, ऐसे इंग्लिश में कहावत। तो बुद्धि, फिर है संस्कार। अभी संस्कार नाच न नचाए तो हमारे सारे संस्कार दिव्य हो। ऐसा कौन सा संस्कार है हमारे स्वभाव में जिसके वजह से मैं नीचे गिरता हूं? ऐसा वो कौन सा संस्कार है कि जिससे आंखों से आंसू बहने लगते हैं? ऐसा वो कौन सा संस्कार है कि जिससे संवेदनशील हो जाती है आत्मा, सेंसिटिव हो जाती है? ऐसा वो क्या है? नाजुकपना। उसको वहां से हटा दो। रूलिंग पावर, कारण का निवारण करो, कारण को ढूंढो, ढूंढना पड़ेगा, खोज, सर्च, इंक्वायरी, जासूस लगाना पड़ेगा, कहाँ है वो कारण, क्या है ये जो हुआ, इसका कारण क्या है, वो कारण और फिर निवारण। जैसे जगदीश भाई के लिए कहते हैं कि वो कोई भी चीज अगर उनको बताई जाए, जैसे मम्मा भी अगर कोई बात कहे तो वो कहते थे इस बात से 8 फायदे होंगे और 4 नुकसान। अभी तो बात कही भी नहीं और 8 और 4 तैयार है। तो उसको कहते हैं ना, इनकी बुद्धि जैसे कि कैसी है, कितने फीट की है, 6 फीट की, 8 फीट की, 8 फीट लंबी बुद्धि है। तो मतलब इतना तर्क, मतलब आज ये कर्म कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, इससे फायदे क्या नुकसान क्या, आज नहीं और 10 साल के बाद इसका क्या प्रभाव होगा, आफ्टर मैथ, आफ्टर इफेक्ट्स, वहां तक सोचना और त्रिकालदर्शी स्थिति में रहना, ताकि कोई भी कर्म गलत ना हो, सेवा के क्षेत्र में भी, ताकि कोई भी चीज ऐसी ना हो कि जिसका पश्चाताप ना हो। हर वो कर्म जिससे खुशी हो और जिसके बाद में पश्चाताप ना हो, वो यथार्थ कर्म है। ग्लानी ना हो, आत्मग्लानी, अपराध भाव, गिल्ट फीलिंग, वो ना हो अंदर। तो ये फिर माया बाबा ने मुरली के लिए कहा, ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मूर्छित हो जाए, माया को सरेंडर कराने वाली मुरली चलाओ। वो तो बहुत चला ली, माया जीत का रात का सांस। ये यहाँ फिर विदेश में माया आती है नहीं आती है, उसके लिए भी बाबा ने, उन्होंने कहा आती है, बाबा ने उधर तो फुल फोर्स है, सारा भोग लिया, उसके बाद में भी आती है। तो क्या कहा, माया के पुराने ग्राहक है, तो बाबा ने कहा उनको नए ग्राहक दे दो, तो वो स्वतः ही छूट जाएंगे। फिर यहाँ पे पद्मा पदम भाग्यशाली है, विदेशियों को कहा बाबा ने, पद्मा पदम चांस मिला है उनको, एक वर्ष में भारत वाले जितना नहीं लेते, वो कुछ दिनों में ही लेके चले जाते हैं यहाँ से, यहाँ वाले भी जितना नहीं लेते वो यहाँ पे आकर लेकर चले जाते हैं। वो एक बात की। फिर उसके बाद में विदेशियों को पूछा बाबा ने, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके लिए फिर यहाँ पर पहले वालों ने क्या सेवा की और अभी तुमको क्या सेवा करनी है। पहले वालों ने क्या किया, स्थापना का कार्य किया, तो तुमको क्या करना है, विनाश का कार्य करना है। पहले वालों ने स्थापना की डेट फिक्स की, अभी तुमको क्या करना है, विनाश की डेट फिक्स करना है। पहले वालों ने पालना का रिटर्न, स्थापना की, तुम्हें पालना का रिटर्न, अभी तुम्हारी विशेष पालना हो रही है, प्रत्यक्ष फल उसका विनाश। उसके बाद में पहले वालों ने और क्या किया, आहुति डाली, तुम्हें अंतिम आहुति डालनी है, अंतिम आहुति, एक संकल्प का स्वाहा। सुबह बता रहे थे ना बहन जी, एक संकल्प, उधर एक सुर का स्वाहा है, एक सुर अंतिम स्वाहा, इधर एक संकल्प का स्वाहा, अंतिम आहुति। क्योंकि ये व्यंग किया है बाबा ने शायद, भारत अविनाशी है तो स्थापना किया, विदेश विनाशी है तो क्या करेगा, विनाश के निमित्त बनेगा। तो फिर उन्होंने पूछा कि हम, बाबा ने कहा ना कब करोगे, 81 80, उन्होंने कहा एक बार आने दो, बाबा ने कहा तब तो आ ही जाओगे इधर, परंतु किसके पास आवाज पहुंचेगा, डायरेक्शन किसके पास पहुंचेगी, जो वॉइसलेस की वायरलेस, वॉइसलेस बेतार, बेतार संप्रेषण, नॉन वायरलेस कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, बेतार, कोई तार नहीं है उसमें, तो ऐसा वॉइसलेस जो है उसकी वायरलेस का अगर सेट है तो डायरेक्शन हो आएगा, मिलेगा, कैच कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। इसी का फिर बाबा ने उधर ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो प्रश्न पूछा, विनाश में हमारा क्या होगा, पिछली बार भी पूछा था कि आप बाबा हमारे इधर क्यों नहीं आते, ऑस्ट्रेलिया वालों ने पूछा था ना, उसका क्या उत्तर दिया था, हमारे इधर क्यों नहीं आते का, बाबा तो रोज चक्र लगाता है, बाबा तो विश्व भ्रमण करता है, कोई बच्चे सोए रहते हैं, बाबा का तो कर्तव्य है उसको सकाज देते हैं, रू रियान करते है, इसका मतलब सामने है तो करते हो ना, नहीं तो कैसे करोगे। तो आज क्या पूछा, ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का, टापू तो अभी है,
भारत के साथ
कुछ पानी में कुछ बाहर, जो बाप की याद में है वो सेफ रहेंगे, विनाश से पहले सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे, विनाश से पहले उनका विनाश विनाश नहीं करेगा, स्वेच्छा से शरीर को छोड़ेंगे, इच्छा मृत्यु, महाभारत में जो दिखाया है किसका, भीष्म का, अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करना, स्वेच्छा मृत्यु। कैसे त्याग करेंगे आज की मुरली से, जैसे कि वस्त्र, एक वस्त्र को छोड़ा और दूसरा धारण कर लिया, इसके लिए पर ये कर भी कौन सकेंगे, दो दो कंडीशंस रखी है बाबा ने, एक तो बार बार अशरीरीपन का अभ्यास और दूसरा बुद्धि की लाइन क्लियर, तो जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, जिनको अशरीरपन का अभ्यास है, वही सेफ रहेंगे, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे, जो बाप की याद में रहेंगे वो भी एक बात है, तो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, विनाश की के सर्कमस्टांस में उनका विनाश नहीं होगा, बाबा की याद में और स्वेच्छा से शरीर को छोड़ेंगे। तो ये कहां कहां, ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए, तो फिर से आ जाओ इधर, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए कहां से शुरुआत की बाबा ने, अच्छा वो लास्ट में, तो नौकरी भी जल्दी ले लेते और जल्दी छोड़ते भी है, पहले ही निर्बंधन है, देह और देह के बंधन पहले ही छूटे हुए हैं, स्वतंत्र है, पहले से ही फ्री है, आधे बंधन तो टूटे हुए हैं, इसके लिए अभी हाई जंप लगाओ। और जो विशेषता सुनाई विदेशियों की, हाँ सेवाओं के लिए दूसरे के पास जाते हैं, चात्रक है, स्वतः आ गए इस उस डाली से, गलती से उस डाली पर चले गए थे, इस डाली पर आ गए, जो हमने बात की पहले, तो ये उनकी विशेषता है, उधर से इधर आ गए। और गुप्त वेश में पांडव का उदाहरण दिया है कि जैसे महाभारत में दिखाया ना, पांडव एक साल तक अज्ञातवास में रहे, यहाँ बाबा ने कहा तुम भी जैसे कि गुप्त वेश में सेवा कर रहे हो, धर्म रूप का परिवर्तन, धर्म रूप में परिवर्तन करके, पांडव कौन थे, क्षत्रिय थे, परंतु वो जब विराट नरेश के पास एक साल दिखाए ना रहते हैं, कोई कुछ बनता है, कोई बृहण नला, कोई वो कंकण, अलग अलग बनते हैं, कोई बर्तन, कोई वो भीम उधर रहता है, हाँ नर्तक, अलग अलग अलग, मतलब धर्म परिवर्तन और रूप भी परिवर्तन, क्योंकि वो दिखाया ना अर्जुन अपने सारे, अर्जुन उनके सारे वस्त्र और उनके सारे जो क्या कहते हैं अलंकार या शस्त्र एक झाड़ के पास छिपा के रखते हैं, फिर उधर जाते हैं उनके पास, जो बीच में दिखाया फिर लास्ट में युद्ध होता है इनके साथ, तो वो सब निकालता है अर्जुन वहां से और फिर युद्ध करता है, एक युद्ध दिखाया छोटा सा विराट नरेश का। तो यहाँ पर बाबा कह रहे गुप्त वेश में गए, पांडव सेना है, रूप धर्म का, धर्म रूप का परिवर्तन करके, और भी परिवर्तन बताया है, गुण का परिवर्तन, गुण धर्म कर्तव्य और देश बदली हो गया यहाँ आते, तो ये सारी बातें यहाँ बाबा ने कही है। और क्या कहा ऑस्ट्रेलिया वालों को, हाँ एडवर्टाइजमेंट, एक्स्ट्रा लिफ्ट, लास्ट संडे की मुरली, दो दो जो विशेषता है उसमें पहली विशेषता थी लिफ्ट, वो लिफ्ट थी वो वाली, यहाँ पे आप क्या बात कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट की बात की पापा ने, क्या कहा एडवर्टाइजमेंट में, सबसे पहले तो आवाज एडवर्टाइजमेंट, फिर एक दिन पहले आवाज बंद, फिर वोटिंग और फिर रिजल्ट, चार स्टेजेस जैसे, तो यहाँ पर क्या एक पावरफुल माइक तैयार करो, तो वो माइक क्या करेगा, उसकी आवाज भारत तक पहुंचेगी, आवाज आवाज के बाद डेड साइलेंस, उसके बाद में उधर वोटिंग, इधर शायद विनाश या परिवर्तन, और फिर उसकी रिजल्ट। ये इतना 1980s में बाबा ने ये पॉलिटिक्स का उदाहरण दिया है। रिलीजियो पॉलिटिकल, ये उदाहरण कितना पावरफुल है देखो, ये शायद ही आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, दिया भी नहीं होगा इस तरह का उदाहरण, वो भी धर्म के संदर्भ में। धर्म की बात चल रही है, अध्यात्म की बात चल रही है, उसमें राजनीति का उदाहरण कि पहले आवाज, फिर आवाज बंद, फिर वोटिंग, फिर रिजल्ट। इधर पहले माइक तैयार करो, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको ज्यादा टाइम लगेगा। वो जो लास्ट स्टेप है डेड साइलेंस वाला, उसमें टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप बोला ना, पहला ये बाद में वो, तो ये भी एक उदाहरण दिया है बाबा ने। तो यहाँ पे जो मुख्य जो बात थी, बार बार अशरीरीपन का अभ्यास, और दूसरा याद अशरीरीपन और बुद्धि की लाइन क्लियर। उसमें भी अशरीरीपन सारा मुरली अगर देखो तो वहीं पे आके रुक रही है। अशरीरीपन यही, अगर देहभान ही सारे विकारों की जड़ है, हम देखो सारी अशांति, सारा दुख, सारी समस्याएं किससे आ रही है, देहभान की वजह से। देहभान है तो विकार है, अभी इसका कारण है देहभान। अब कारण को मिटाओ तो बाबा ने क्या कहा, निवारण। तो कारण का निवारण क्या है फिर, अशरीर। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है कि जिसमें देह से न्यारे होते ही हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं, परिस्थिति, वो जो भी है सब नष्ट हो जाएगी। समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो, हाँ अशरीरी बनो तो विघ्न समाप्त। परंतु ये बात को हमारे मन ने इतना स्वीकार कर लिया है, ये इतनी गहरी फिलॉसफी रखी हुई है, इतनी डेप्थ है इस फिलॉसफी में, कि आत्मा अशरीरी होते ही सरकमस्टांस, परिस्थिति, व्यक्ति, व्यक्तियों से आने वाले विघ्न, परिस्थितियों से आने वाले विघ्न, प्रकृति से आने वाले विघ्न सब समाप्त हो जाएंगे। कितना बड़ा साइकोलॉजी है, कितनी बड़ी साइकोलॉजी है केवल अशरीरी होने से। और उसकी प्रैक्टिस बाबा ने कहा दिन भर में, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का भी उदाहरण दिया है, उसमें भी ऐसा प्रोग्राम सेट करो तो लिंक जुटी रहे, टाइम की बुकिंग करो पहले से, मन का प्रोग्राम करो, माइंड का प्रोग्राम करो। तो सारी मुरली का अगर हम सार फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, तो ये जो सेकेंड पार्ट है उसमें ऐसे मुरलीधर बनो कि माया सरेंडर हो जाए। मुरलीधर अर्थात मुरली के स्वरूप, मुरलीधर अर्थात ज्ञान स्वरूप, मुरलीधर अर्थात ज्ञानवान, मुरलीधर अर्थात जिसको ज्ञान में, मनन में, चिंतन में, अध्ययन में, पठन पाठन, हर चीज में, चर्चा में, परिचर्चा में, हर चीज में बहुत रस है। ज्ञान की अवस्था में भी वही सुख है, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में भी वही सुख है जो योग की सर्वोच्च अवस्था में है। ये भी एक सूक्ष्म साइकोलॉजी है कि ज्ञान में हम जितना गहराई में जाएंगे, एक अवस्था ऐसी आएगी कि उसमें भी अशरीरीपन का अनुभव होगा। जैसे संसार के कवि, फिलोसोफर, चित्रकार, ये भी अपनी चित्रकला करते करते अशरीरी हो जाते हैं, उनमें काम विकार, क्रोध ये सब नहीं रहता है। साइंटिस्ट इतने खो जाते हैं कि वो एक प्रकार से उनमें भी अशरीरीपन की अवस्था, इसके लिए तो इतनी बड़ी बड़ी खोजें करते हैं, ऐसे ऐसे चित्र निकालते हैं, कितने पुराने चित्र है जो आज तक भी है। क्या है ऐसा चित्र में, आजकल के 10 चित्रकार वैसा ही चित्र निकाल सकते हैं, परंतु उस चित्र का अभी भी महत्व है, क्योंकि वो जिस अवस्था में निकाला गया था उसका, जैसे उसमें समा गई है वो अवस्था उस चित्र में, मोनालिसा और ऐसे कई सारे चित्र है। तो कहने का भाव, ज्ञान की बात कर रहे थे हम, तो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था भी योग की सर्वोच्च अवस्था के लगभग समान है, पर हम केवल मुरली पढ़ना, सुनना या याद रखना, सुनाना, इतने तक वो सीमित ना हो। मुरलीधर बनो कि जिसके सामने माया सरेंडर हो जाए, अर्थात विकार समाप्त हो जाए, इतनी हमारी ज्ञान की भी उच्च अवस्था हो, इसका भाव ये है। तो मुरलीधर अर्थात उस मुरली का जैसे स्वरूप, तो ये भी एक यहाँ से होमवर्क है। पूरी मुरली से स्वराज्य अधिकारी, मालिकपन की अवस्था, अधीनता ना हो, मन भी वश में, मनमत परमत ना हो, बुद्धि भी निर्णय यथार्थ दे, संस्कार भी नाचना नचाए, रूलिंग पावर पूर्ण हो, अधिकार की शक्ति हो, और कारण का निवारण कर देना है और यहाँ पे बार बार अशरीर अवस्था का अभ्यास, दिन में अशरीरी अवस्था का अभ्यास, ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में अशरीरी अवस्था का अभ्यास, बैठे बैठे अशरीरी अवस्था, केवल कुछ सेकेंड्स भी कि मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ या मैं आत्मा मुझसे पवित्रता की किरणें फैल रही है, 10 सेकेंड, मैं आत्मा परम धाम में अशरीरी, ये बार 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 बार। अभी कल की जो हमने मुरली पढ़ी थी जीरो और हीरो वाली, उसमें क्या था, बातचीत करते समय आत्मा देखना, शरीर में रहते आत्मा स्वरूप में रहना, कितनी छोटी सी बात है परंतु सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा अभ्यास भी इसी बात का है, क्योंकि सारा ज्ञान अगर देखो वहीं आके रुक रहा है, देह से अलग हो जाओ, अशरीरीपन का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास। केवल योग से ये फायदे हो रहे हैं, वो फायदे हो रहे हैं, हमको पता सब है परंतु अनुभव कहाँ हो रहा है, अनुभूति की बात है। इसके लिए योग के भी चार्ट को धीरे धीरे बढ़ाना है, और वो योग अर्थात केवल बाबा के कमरे में बैठना योग नहीं, वास्तविक योग तो कमरे से बाहर निकलकर चालू होता है। असली योग
तो मिलन होता है,
हाँ वहाँ बाप का मिलन होता है। चलो स्लोगन एक रह गया है, स्लोगन में क्या कहा बाबा ने, ज्ञानी तो आत्मा कौन है, अभिमान गुण और विशेषता। ये यहाँ पर ये जो बुद्धि वाली बात कही है ना, सॉरी इसमें मुरली में यहाँ बुद्धि का नागेश भाई जी ने दिया है अहंकार, वो भी हम पढ़ेंगे, बुद्धि का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, गुण का अभिमान, विशेषताओं का अभिमान की लिस्ट, देह अभिमान की लिस्ट, एक लिस्ट है देह अभिमान की, दूसरी लिस्ट है देह भान की, तीसरी लिस्ट है देह अहंकार की, 3 अलग अलग लिस्ट है। वो सारा बहुत सारी चीजें उसमें हम कभी सुबह की क्लास में यहाँ चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो मुख्य मुख्य पॉइंट्स लेकर उनका चिंतन करना है इस मुरली से। कल 18 जनवरी कल इसी समय बाबा के यही समय में बाबा से मिलेंगे, तो सारे दिन भर हमारी स्थिति अव्यक्त हो, मौन में हो, ज्ञान की स्थिति हो, अंतर्मुखी हो, पर चिंतन पर दर्शन यहाँ वहां की बातें, इन सब से ऊपर रहना है, हमारा टाइम कहीं पर भी वेस्ट ना हो। और कल सुबह की क्लास में हम यहाँ 18 जनवरी की जो साकार मुरली है उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
नंबर 9228 कर दो, मेरा ही नंबर 9228, तो 8 आर लग रहा।